देवियों सज्जनों, 15 अगस्त को भारत का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ। आज हमारे समाज में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, झंडा फहराएंगे। थोड़ी बहुत बातें भारत के इंडिपेंडेंस डे के बारे में। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब जहां व्यक्ति अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकें, या कोई देश अपनी अपने आप से शासित हो, जिसको आप कहते हैं सेल्फ रूल्ड हो, जहां हमारे लोग, हमारे द्वारा चुने हुए लोग हमें शासन करें, व मैं अपने बारे में खुद डिसीशन लूं, ये स्वतंत्रता। और ये सिर्फ इंसान नहीं, हर प्राणी की एक बर्थ राइट है या नेचुरल एस्पिरेशन है। हर व्यक्ति को ये इच्छा होती है कि वो अपने ढंग से जिए। इसीलिए दुनिया में जितने भी देशों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वह किसी भी तरह की क्रिमिनल को जो सजा देते हैं, तो सबसे पहले हम उसका फ्रीडम छीनते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, जिससे कि वो अपनी मर्जी से चल न सके, बोल न सके, खा न सके, कर न सके। तो 1947 को हजारों सालों के गुलामी के बाद ब्रिटिश के 200 साल के अलावा भी 800,000 साल तक हम अलग अलग प्रकार से गुलाम रहे, भारत आजाद हुआ। ये 70 साल के जो नया भारत है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, इसमें बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स आए। 47 में जब भारत आजाद हुआ तो बहुत ही बेचारा किस्म का भारत, जो इकोनॉमिकली, एकेडमिकली, हर तरह से बहुत दयनीय स्थिति में था, जिसका समाज ठीक से व्यवस्थित नहीं था, जिसका कोई इकोनॉमी कोलैप्स्ड जैसा था, जिस पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग ऑलमोस्ट जीरो के बराबर लिटरेसी थी। ऐसे एक देश को आजाद होने के बाद 70 साल में बहुत कुछ भारत आगे बढ़ा, बहुत कुछ होना चाहिए था, पर उसके बावजूद भी जो कुछ हुआ है वो भी हमारे लिए कम गर्व करने का विषय नहीं है। बहुत सारे स्कोप हैं हमारे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो, अच्छे एजुकेशन हो, इकोनॉमी में और बढ़ी हो, लोग और पढ़े लिखे बने और समझदार बने, देश में हर तरह की वो सुविधाएं मिलें जो वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, ये सब की सारी पोटेंशियल हैं, सभी स्कोप हैं। उसके बावजूद आज हम चर्चा करेंगे जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, जो 1947 से लेकर आज तक इंडिया ने क्या अचीव किया है, हमारे देश ने क्या किया है, उसके बारे में थोड़ी बहुत विचार करेंगे। हो सकता है आपको उसमें कहीं कोई प्राउड फील करने का मौका मिले, या कहीं कुछ अपने आप कुछ करने के लिए, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके अंदर कोई फीलिंग जगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत जब आजाद हुआ। जैसे मैंने बताया, हम एक ऑलमोस्ट इलिटरेट देश थे, जिसमें मुश्किल से 10-11% लिटरेट थे। लिटरेट का मतलब एजुकेटेड नहीं, जिनको बस लिखना पढ़ना मुश्किल से आ जाता होगा, ऐसा सिर्फ 12% थे। उसके बावजूद भी भारत में डेमोक्रेसी को अपनाया और 70 साल में हम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, वो किसी भी अच्छे पुराने डेमोक्रेटिक सिस्टम से, वो अमेरिकन या यूरोपियन सिस्टम से ज्यादा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उससे बेटर हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन हो, हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसे सैकड़ों इंस्टीट्यूशन से वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं आज, कोई यूरोपियन जो बहुत मॉडर्न देश हैं उनको भी जेलेसी हो सकती है। जबकि अभी भी हमारे यहां लोगों में लिटरेसी की अभाव है, लोगों में गरीबी की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी हमारा देश लोकतंत्र को जिस तरह अपनाया, जैसे मानो इट्स पार्ट ऑफ देयर नेचर हो। हमारे पड़ोस में भी बहुत सारे देश थे, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बर्मा है, म्यांमार है, भूटान है, चाइना इतना बड़ा देश है, इधर अफगानिस्तान है। उस आसपास के एरिया में कहीं आपको इतना प्रखर लोकतंत्र नहीं मिलेगा, इतना स्टंच जो डेमोक्रेसी नहीं मिलेगा जो भारत में आपको दिखने को मिलता है। यह हमारे लिए गर्व करने का विषय है कि हम ये सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है कि जो पॉलिटिशियन को सिर्फ समझने की जरूरत है। अजय, किसी भी देश के जुड़ा होने के नाते, हम उसके ऑफिशियल सिटीजन है या नहीं है, किसी भी देश से जुड़े होने के नाते किसी देश के इतने रूट तक, ग्रास रूट तक लोकतंत्र पहुंचा हुआ हो जहां हर व्यक्ति लोकतंत्र को अपने नेचर के साथ जोड़ के देखता हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आज दुनिया में वैसे ही बड़े बड़े देश अपने लोकतंत्र छोड़ के दोबारा अलग अलग तरह के तंत्रों की ओर जाते हैं। देवियों सज्जनों, भारत एक अपने आप में यूनिक देश है। आप उसे किसी यूएसए या यूरोपियन देश से कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें 30 करीब देश राज्य हैं और हर राज्य अपने आप में यूनिक है। हर एक की भाषा अलग है, कल्चर अलग है, खान पान अलग है, कपड़े पहनावा अलग है, माइंडसेट अलग है, सब अलग है। उसके बावजूद भी हर कोई इंडियन अपने आप को मानता है। ये अनोखापन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो यूनिटी है वो यूएसए से लेकर चाइना से लेकर यूरोपियन कंट्रीज में, उनकी एक ही भाषा चलती है, एक ही टाइप का कल्चर है, एक ही टाइप का खान पान है। पर भारत में हर व्यक्ति दूसरे से अलग है, उसके बावजूद भी उसमें एक यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी भाषाओं की। इतनी भाषाएं हैं, 122 तो बड़ी बड़ी भाषाएं हैं जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल बोलते हैं एक एक भाषा को, और 1599 छोटी छोटी भाषाएं हैं जो किसी ट्राइबल सेक्ट का है, किसी में 10,000, किसी में 2,00,000, किसी में 5,00,000, किसी में 15,00,000 लोग बोलने वाले। 122 भाषाएं जिसमें एक एक भाषा में करोड़ों लोग बोलते हैं, किसी में आधे करोड़ बोलते हैं, किसी में करोड़ों बोलते हैं। सिर्फ लैंग्वेज अलग नहीं है देवियों सज्जनों, उनकी स्क्रिप्ट भी अलग है। आप भारत से निकल करके यूरोप के किसी भी देश में चले जाओ, रशिया में चले जाओ, आपको स्ट्रीट में चलो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। भारत में उतना तक भी नहीं है। हिंदी वाला चले तमिलनाडु, तमिल में लिखा हुआ मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, कौन सा एडवर्टाइज चला हुआ है। अब बंगाल जाएंगे तो बंगाली में लिखा होगा, भाषा सिर्फ बंगाली नहीं है, स्क्रिप्ट भी अलग है। तो स्क्रिप्ट भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, खान पान भी अलग है, धर्म भी अलग है। उसके बावजूद भी हम इतने बड़े देश को लोगों ने अपने एक दूसरे से जोड़ के रखा है। ये इस इंडिपेंडेंट इंडिया की एक अचीवमेंट है कि इतनी भाषाएं होने के बावजूद भी हम एक दूसरे का भाव ना समझते हुए भी हम एक दूसरे के साथ अपनी यूनिटी बनाए रखते हैं। ये कंपैरिजन आप दुनिया के किसी भी देश के साथ नहीं कर सकते। ये आपके लिए एक यूनिकनेस है, और एक यूनिकनेस आपको जो प्राउड फील कराता है। इसी तरह भाषा सिर्फ नहीं है, हमारे यहां दुनिया में ऐसा कोई रिलीजन नहीं, छोटा हो बड़ा हो, जो भारत में नहीं होता हो। दुनिया में कहीं भी पारसी धर्म अब नहीं बचा। ईरान में जब से रिवॉल्यूशन हुआ सब भगा दिया, सब मुसलमान जो बनने थे बने, और जो थोड़े बहुत बचे थे जब रिवॉल्यूशन करके शाह को हटा के यहां इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, तो जो भी थोड़ा बहुत पारसी थे भाग करके और कहीं नहीं इंडिया में आए। दुनिया का सबसे पुराना ज्यूस आपको इंडिया में मिलेगा, सबसे पुराने पारसी इंडिया में मिलेंगे, जो 3,000 साल पहले, कोई 2,500 साल पहले अपने अपने देश छोड़ के भागे थे शरण लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए, और भारत में आज भी वो रहते हैं। हर तरह के धर्म के लोग आपको वहां मिलेंगे, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, इवन हिंदू धर्म को मानते हुए भी अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग भाव हैं। उस दिन हम बात कर रहे थे कि किसी ने पूछा कि हिंदू धर्म में तो अहिंसा है, सब वेजिटेरियन है, तो किसी ने बताया हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा सेक्ट है, बहुत बड़ा इंडिया का पूरा बेल्ट है, ईस्टर्न बेल्ट, जो हिंदू हैं पर मंदिरों में भी मछली और मांस पूजते हैं, भोग चढ़ाते हैं, वो भी पार्ट ऑफ आपके ही रिलीजन है। इतनी डाइवर्सिटी से भरा हुआ आपका देश है, धर्म, वेश भूषा, संस्कृति, कल्चर, कौन सा चीज है जो कॉमन है, उसके बावजूद भी कश्मीर से कन्याकुमारी हो या गुजरात से लेकर के मेघालय तक हो, हर भारतीय अपने आप को भारत से आइडेंटिफाई करता है। यह हमारी और आपकी यूनिकनेस है। दुनिया में किसी भी देश में इस तरह की डाइवर्सिटी में यूनिटी आपको नहीं देखने को मिलेगा। देवियों सज्जनों, जब 1947 को भारत आजाद हुआ तो मुश्किल से 12% लिटरेसी थी, जिनको अक्षर पहचानना आता है, मतलब अ क ख ग घ पढ़ सकते हैं, दैट्स इट, या अपना साइन कर सकते, अपना नाम पूरा लिख सकते हैं। अगर मैट्रिक पास तक की बात करें तो मुश्किल से 1-2% होंगे जो मैट्रिक 10th grade 10th पास किया हुआ थे, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वालों की संख्या तो बहुत ही लोअर था। आज 2011 के जनगणना के हिसाब से भारत में 74% लिटरेसी रेट है। हमने अचीव किया है, इसीलिए कंपेयर करना मुश्किल है दूसरों देश के साथ। एक व्यक्ति कहां से एक देश जीरो से उठकर कहां आता है, आप उसको किसी दूसरे देश के साथ जब कंपेयर करते हैं तो जस्टिस नहीं करते हैं। आज भी हमारे देश में इतने इलिटरेट लोग हैं, इलिटरेट मतलब जिनको अक्षर भी पढ़ना नहीं आता है, वो पूरे अमेरिका का जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इलिटरेट हैं। करीब करीब 35 करोड़ लोग, जो अमेरिका के जनसंख्या से ज्यादा है, पर अमेरिकन पॉपुलेशन से दुगुना से ज्यादा हमने 70 साल में लोग लिटरेट बने हैं। 2014 के आंकड़े के हिसाब से, स्टैटिस्टिक के हिसाब से, भारत में 677 यूनिवर्सिटीज हैं, 37,204 कॉलेजेस हैं, 11,443 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस का मतलब जो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आते हैं, जैसे IITs हैं, जैसे IIMs हैं, ऐसे सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस हैं, हजारों इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑटोनॉमस हैं। तो वी आर प्रोग्रेसिंग। मैंने शुरू में कहा ऐसा नहीं है कि इनको सुनने के बाद कोई कहे कि सब कुछ हो चुका है, पर 70 साल में भारत बहुत सारे अप डाउन के बीच में हम यहां तक पहुंचे हैं। आज दुनिया के ज्यादातर देशों में, और जिस देश में आप रहते हैं वहां का मोस्टली जो हायर एजुकेशन या हायर एजुकेटेड पॉपुलेशन है, उसमें इंडियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा परसेंटेज है। वो इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर्स हो, और किसी प्रोफेशन में जहां हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनके परसेंटेज हमारा ज्यादा है। सिर्फ यहां नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, अलग अलग देशों में, दुनिया के ज्यादातर देशों में हमारे इंजीनियर्स काम करते हैं। तो ये इस 70 साल के इंडिया का प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इसी तरह जब भारत आजाद हुआ देवियों सज्जनों, तो हमारे यहां अनाज इतना पैदा नहीं होते थे कि हम सारे लोग खा सकें, सबको पैसा देकर भी कोई अनाज खा सके। तो हमें वर्ल्ड बैंक, हमें UNA से मिलता था, चैरिटी में दान में गेहूं मिलता था, अलग अलग देश वालों से हम भीख मांगते थे, पैसा भी नहीं होता था कि हम गेहूं या धान या जो भी ग्रेन से खरीद सकें, ले सकें। जब भारत में 60s में अकाल पड़ा तो यूएसए ने उनका एक चैरिटी स्कीम के तरह भारत को गेहूं दिया। अरे गेहूं, ऐसे गेहूं, कीड़े से भरे हुए गेहूं, इतनी एम्बेरिशिंग होकर के हमें लेना पड़ा था, इतनी बेइज्जत करके अमेरिका ने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री तब प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान दिया जय किसान के नारे के साथ। देवियों सज्जनों, आपको आश्चर्य होगा, आज 70 साल के इंडिपेंडेंट इंडिया ने आज भारत के, विश्व के ऐसे 50 देशों को खुद खाना भेजता है, फ्री में भेजता है, अफ्रीका से, अफ्रीकन देशों से लेकर अपने पड़ोसी देशों में, जिनको वो फूड ग्रेन सप्लाई करता है, चैरिटी के रूप में करता है। ये हमने अचीव किया है। आज भारत बहुत सारे चीजों में हम दुनिया के सबसे नंबर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हैं, कहीं नंबर टू हैं, और दुनिया के 120 करीब करीब देशों में हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे देशों में हम फ्री में एड के रूप में, जो 60s तक हम दूसरों से एड लेते थे, आज भारत की स्थिति है कि हम मिलियंस ऑफ टन्स फूड ग्रेन्स हम चैरिटी में दूसरे देशों को देते हैं जो गरीब देश हैं। ये भारत ने अचीव किया है इस बीच में। देवियों सज्जनों, इसी तरह रोड नेटवर्क की बात है। ये रोड किसी अमेरिकन रोड का चित्र नहीं है, वो इंडियन है, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे कि फोटो कहीं से लगा के कुछ बता दिया हो, ऐसा नहीं है। भारत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी, अगर आप 30-40 साल पहले इंडिया से बाहर आए हैं और कभी गए नहीं है, तो आप किसी गांव में जाकर देखिए, कंक्रीट रोड, रिमोट गांव तक भी कंक्रीट रोड पहुंच रहा है। हम कंपेयर नहीं कर रहे किसी दूसरे देश के साथ, नेचुरली हम कंपेरिजन के लायक नहीं है, पर हम जहां से उठे हैं और आज तक हम कहां पहुंचे हैं ये जानने की जरूरत है। जब हम आजाद हुए हमारे पास क्या था, हमारे पास मुश्किल से 0.399 मिलियन किमी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, और आज 4.24 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 के आंकड़े के स्टैटिस्टिक के हिसाब से है। ये उस रेलवे ट्रैक से, लाइन से अलग है, जो भारत का सब, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है वो आपको सिर्फ भारत में मिलेगा। इसी तरह जो भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी है, आफ्टर ऑलमोस्ट 7 decades ऑफ इंडिपेंडेंस, आज हम दुनिया के 3rd largest प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, 4th largest कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि आज भी भारत में बहुत गरीबी है, जहां इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए लोगों के पास पैसे भी नहीं है। तो वी आर ग्रोइंग, वी आर प्रोग्रेसिंग। आज इट हैज इंक्रीज्ड इट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। 1947 में सिर्फ 1,362 मेगावाट हम प्रोड्यूस करते थे, और आज के डेट में 113,506 मेगावाट 2004 के आंकड़ा है। इस बीच में 15 साल बीत चुका है। इसी तरह हेल्थ केयर में भी, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंस, जो एक व्यक्ति की जिंदगी का जो समय था, जो एवरेज था, वो मुश्किल से 32 इयर्स था। उससे ज्यादा लोग, कोई 10 साल में, 20 साल में मरता था, कोई 60 साल में, जो एवरेज लाइफ स्पैन था वो 32 इयर्स था। 70 साल के आजादी में आज हम 68.89 इयर्स एक आदमी एवरेज जिंदा होता है। मेरे ख्याल से यूएसए में 70% है, तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, जबकि आज भी हम बहुत प्रॉस्पेरिटी के नाते हम बहुत पीछे हैं। और ये सब भारत के हेल्थ केयर में जो रिवोल्यूशन आया, ऐसे सैकड़ों जो एपिडेमिक्स हैं, जैसे पोलियो है, आज भारत में 0% पोलियो है। देवियों सज्जनों, 0% पोलियो हमने अचीव किया है। ऐसे सैकड़ों एपिडेमिक्स हैं। पहले लोग को डायरिया होता था तो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था, प्लेग में पूरा का पूरा शहर साफ हो जाता था, जब अकाल पड़ता था तो पूरे पूरे राज्य के आधे करोड़ों लाखों लोग मर जाते थे। आज एक किसान भी अगर मरता है तो सरकार हिल जाता है। तो इतना भारत में प्रोग्रेस हुआ है, हेल्थ केयर में भी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरह वो स्पेस हो या मिलिट्री पावर हो, उसमें भी भारत बहुत आगे है। देवियों सज्जनों, हम कोई बहुत बड़े धनी देश नहीं है, भारत कोई आज भी कोई बहुत ज्यादा धनी देश नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे मिडिल क्लास के साइंटिस्ट लोगों ने जो चमत्कार दिखाया, जो मिरेकल करके दिखाया, वो चंद्रयान से लेकर मंगलयान से लेकर के स्पेस शटल तक, आज भारत की ये क्षमता है कि अनेक डेवलप्ड देश अमेरिका को इंक्लूड करके देशों के जो शटल्स होते हैं, जो स्पेस शटल्स होते हैं, आज भारत भेजता है, क्योंकि भारत से भेजना सस्ता पड़ता है। हम कमर्शियली स्पेस शटल को भेजने का काम आज करते हैं और बहुत सारे डेवलप्ड देश भी हमारे देश से वो करवाते हैं। हमारे वो जो मिडिल क्लास साइंटिस्ट हैं, जो चप्पल पहन के ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तिलक लगा के चप्पल पहनते हैं, वो उस आम इंडियन की ये अचीवमेंट है। और आप कह सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत इस प्लैनेट में गिने तुने तीन चार देशों में से एक माना जाता है। और वो जो तीन चार देशों में से एक माना जाता है, वो सैकड़ों सालों से प्रॉस्पर हैं, एडवांस्ड हैं, डेवलप्ड हैं। उसके बावजूद भी हम एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद कम से कम स्पेस टेक्नोलॉजी में हम उन तीन चार देशों के साथ खड़े हुए मिलते हैं और कभी कभी हम उनसे आगे जाते हैं। हमारा मंगलयान में आपको सब पता है, जो मार्स मिशन था उसमें जो खर्चा हुआ था, वो मंगलयान पर एक मूवी बनी थी हॉलीवुड में, उसका 10% से भी कम पैसे में हमने मार्स मिशन पूरा किया था, एक हॉलीवुड मूवी से भी कम पैसे में किया था। ये उस इंडियन साइंटिस्टों के और उसके सिस्टम का ये अचीवमेंट है। ये हो सकता है आप नोट कर पाए ना कर पाए, एक छोटी सी बात है पर एक बहुत बड़ी बात कहती है। ऐसे आपको सैकड़ों फोटो मिलेंगे पर ये एक ग्लिम्स है। अभी जो आपको पता है भारत में अभी बहुत बाढ़ आ रही है, सब जगह फ्लड है, बहुत सारे राज्यों में फ्लड है। ये एक फ्लड अफेक्टेड स्कूल में अगस्त 15 को झंडा फहरा रहे हैं, एक टीचर है, तीन बच्चे हैं। आप कहेंगे इसमें क्या बहादुरी है? बहादुरी है कि जहां लोग फ्लड में इतने अफेक्टेड हैं, अपने घर में भी नहीं है, किसी ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं, उनका घर वगैरह तबाही हो चुका है, उसके बावजूद भी अगस्त 15 के वो ट्री कलर फ्लैग को, तिरंगा झंडा को फहराने के लिए लोग, ये तो एक सिंपल है, सैंपल है। ऐसे हजारों आपको उदाहरण मिलेगा, बाढ़ के बीच में, रेगिस्तान के बीच में, सारी समस्याओं के बीच में लोग बाहर निकल करके आते हैं, बोट से आते हैं, अपने पास कोई ढंग का स्टिक नहीं है तो टूटा फूटा स्टिक लगा के झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। ये जो आम इंडियन की जो पोटेंशियल है, वो उसका आप कहीं कंपैरिजन ढूंढ नहीं सकते। और अगर भारत तरक्की कर रहा है, वो उस आम इंडियन को, वो एक इलिटरेट हो सकता है, हाफ लिटरेट हो सकता है, हो सकता है वो मजदूरी करता हो, छोटा मोटा काम करता हो, पर उसके अंदर जो फीलिंग है, जो इमोशन है और जो पोटेंशियल है, इसीलिए ये भारत देश सिर्फ 70 साल में, 70 इयर्स में हम इतने प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं हमारे देश में बहुत हैं, पर ये दुनिया में आपको ऐसा कोई दूसरा देश नहीं मिलेगा जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के को लेकर के ये देश आगे बढ़ा और 70 साल में जिस तरह के अचीवमेंट हमने की है, ये अपने आप में चमत्कार नहीं तो बहुत बड़ी खुशी का विषय है। और आज एज एन इंडियन ऑफिशियली ना भी हो तो इमोशनली हमें और आपको गर्व करने का विषय होता है। हजारों चीजें हैं जिसमें हम शिकायत करते हैं, शिकायत करना एक डेवलपिंग सोसाइटी का नेचर है। अगर शिकायत ना हो तो कोई भी चीज डेवलप नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं करता। कंपैरिजन भी जरूरी है, नहीं तो अंदर वो भाव नहीं आता है कि हमें आगे बढ़ना है। पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर मामले में आगे बढ़ रहा है, और उसका कोई और जिस रफ्तार से बढ़ता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सो इसीलिए लेट अस रिन्यू एंड रिलीव स्वतंत्रता, द इंडिपेंडेंस, द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड इंटेंट। लेट दिस इंडिपेंडेंस डे सी ए रिसर्जेंट इंडिया स्पर्ड बाय इट्स रूट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर दैट द वर्ल्ड ऑलवेज एनवीड इंडियन सिविलाइजेशन टू बी सिंस टाइम इमेमोरियल। अगर आप भारत की प्राचीन सभ्यता को देखें, हमने पिछले वर्षों में भी हमने स्वतंत्रता दिवस पर चर्चाएं की कि प्राचीन भारत कैसा समृद्ध था। अगर भारत में कोई भी चीज विश्व का, पूरे संसार को, इंडिया का कोई भी कंट्रीब्यूशन है, और एक नहीं सैकड़ों कंट्रीब्यूशन है, वो सब कंट्रीब्यूशन एंशिएंट इंडिया का था, एंशिएंट इंडियंस का था। मॉडर्न इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड को बहुत कम आपको दिखेगा। और वो जो गौरव है, जो हमारे प्राचीन भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, वो रिपीट हो, रिवाइज हो, इसी भाव के साथ हम सब काम करें। ऐसा नहीं है कि हम परदेश में रहकर भारत के लिए कुछ कर नहीं सकते। बहुत लोग अपने अपने तरह से करते हैं, बहुत इंस्टीट्यूशंस अपने अपने तरह से करते हैं। हमारे आर्य समाज भी वहां ऑर्फनेज चलाता है। तो जो जिस लेवल पर काम करता है, आप चाहें तो कहीं किसी इलिटरेसी को दूर करने के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को पढ़ाने में भी हेल्प कर सकते हैं, और आप में से बहुत करते हैं, किसी ना किसी रूप में काम करते हैं। तो जो भी योगदान हो सके इस इंडिपेंडेंट इंडिया को रियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, वो सराहनीय है। तो आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो, और हमारा देश बहुत आगे बढ़े, हम और ज्यादा गर्व के साथ कह सकें मैं भारत में नहीं रहता हूं पर मैं भारत से जुड़ा हुआ हूं। ये भाव गर्व के साथ हम कह सकें। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। ओम शांति शांति शांति।